नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नाट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डेविड सी इवांस की पुस्तक बॉटलनेक्स: अलाइनिंग यूएक्स डिजाइन विद यूजर साइकोलॉजी। डिजिटल उत्पादों के डिजाइन को मानव मनोविज्ञान की सीमाओं के साथ जोड़कर देखने वाली व्यावहारिक गैर कथा पुस्तक है। इवांस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि और उपभोक्ता अनुसंधान के अनुभव के आधार पर पूछते हैं कि उपयोगी दिखने वाले ऐप, सेवाएं और संदेश भी अक्सर लोगों तक क्यों नहीं पहुंचते। उनका उत्तर केवल तकनीकी गुणवत्ता या फीचर सूची में नहीं, बल्कि उन मानसिक प्रक्रियाओं में है जिनसे हर उपयोगकर्ता गुजरता है। पुस्तक 6 मनोवैज्ञानिक अवरोधों, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति प्रवृत्ति, प्रेरणा और सामाजिक प्रभाव का ढांचा प्रस्तुत करती है। लेखक इन्हें बॉटलनेक कहते हैं क्योंकि किसी डिजिटल नवाचार को अपनाए जाने से पहले इन संकरे मानसिक मार्गों से गुजरना पड़ता है। इसका उद्देश्य मनोविज्ञान को अकादमिक सिद्धांत भर ना रहने देकर डिजाइन, संचार और उत्पाद निर्णयों में उपयोगी बनाना है। पुस्तक विशेषकर उद्यमियों, डिजाइनरों, डेवलपरों और विपणन पेशेवरों के लिए एक विश्लेषणात्मक मार्गदर्शिका की तरह काम करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, ध्यान का बॉटलनेक संदेश दिखना और महत्व पाना अलग प्रक्रियाएं हैं। पुस्तक का पहला केंद्रीय विचार यह है कि डिजिटल वातावरण में उपयोगकर्ता का ध्यान स्वाभाविक रूप से दुर्लभ है। किसी उत्पाद का अस्तित्व, उसकी उपयोगिता या उसका विपणन संदेश अपने आप ध्यान की गारंटी नहीं देता। स्क्रीन पर सूचनाएं, विकल्प, विज्ञापन, अलर्ट और प्रतिस्पर्धी सेवाएं एक साथ उपस्थित होती है, इसलिए उपयोगकर्ता अधिकांश संकेतों को छांट देता है। इवांस के ढांचे में डिजाइनर का काम केवल अधिक दिखाई देना नहीं, बल्कि सही क्षण में उचित संकेत देना है। अगर कोई इंटरफेस उपयोगकर्ता के मौजूदा लक्ष्य से असंबद्ध संकेत देता है, तो चमकीला दृश्य भी अनदेखा हो सकता है। इसके विपरीत, लक्ष्य से जुड़ा स्पष्ट संकेत सीमित दृश्य स्थान में भी प्रभावी हो सकता है। यह दृष्टि फीचर खोजने की समस्या को केवल नेविगेशन की खराबी नहीं मानती। समस्या यह भी हो सकती है कि फीचर का संकेत उस समय नहीं आया जब उपयोगकर्ता को उसकी जरूरत समझ में आ सकती थी। व्यावहारिक रूप से यह कम प्राथमिकता वाले तत्वों को घटाने, मुख्य कार्य को दृश्य रूप से अलग रखने और सूचना के समय को उपयोगकर्ता की स्थिति से मिलाने की मांग करता है। ध्यान को बाधित कर जीतने के बजाय उपयोगकर्ता के संदर्भ में प्रासंगिक बनने की बात इस बॉटलनेक का मुख्य निहितार्थ है। दूसरा, प्रत्यक्षीकरण का बॉटलनेक। उपयोगकर्ता वही अर्थ नहीं बनाता जो डिजाइनर ने सोचा था। ध्यान मिल जाने के बाद भी उत्पाद को समझ लिया जाएगा, यह मान लेना गलत है। प्रत्यक्षीकरण का बॉटलनेक बताता है कि लोग स्क्रीन पर मौजूद शब्दों, चिन्हों और संरचनाओं का अर्थ अपने पूर्व अनुभव तथा तत्काल संदर्भ के आधार पर बनाते हैं। डिजाइनर के लिए कोई बटन, लेबल या प्रवाह स्पष्ट हो सकता है क्योंकि उसे उत्पाद की आंतरिक संरचना पहले से ज्ञात है। नए उपयोगकर्ता के पास वह ज्ञान नहीं होता, इसलिए अस्पष्ट नाम, परिचित दिखने वाले पर अलग ढंग से काम करने वाले चिन्ह या अत्यधिक जटिल विकल्प गलत अपेक्षाएं बना सकते हैं। पुस्तक का व्यापक संकेत है कि इंटरफेस को उस अर्थ के अनुरूप होना चाहिए जो उपयोगकर्ता सहज रूप से निकाल सकता है, ना कि उस वर्गीकरण के अनुरूप जो संगठन के भीतर सुविधाजनक है। इसका अर्थ हर जगह अत्यधिक निर्देश जोड़ना भी नहीं है। अधिक व्याख्या स्वयं ध्यान पर बोझ बन सकती है। बेहतर उपाय है कार्य के निकट भाषा, पहचानने योग्य संकेत, परिणामों का पूर्वाभास और ऐसी संरचना जिसमें अगले कदम का अनुमान लगाया जा सके। प्रत्यक्षीकरण को गंभीरता से लेने पर यूएक्स केवल सौंदर्य या स्क्रीन व्यवस्था का विषय नहीं रहता, वह साझा अर्थ बनाने की प्रक्रिया बन जाता है जहां गलत समझ को उपयोगकर्ता की कमी कहकर टालना पर्याप्त नहीं है। तीसरा, स्मृति का बॉटलनेक। बार बार सीखने की मांग उपयोग को कमजोर करती है। इवांस स्मृति को डिजिटल अपनाओं का एक अलग अवरोध मानते हैं क्योंकि उपयोगकर्ता हर बार किसी सेवा पर लौटते समय उसके नियम, स्थान और क्रम याद रखकर नहीं आते। किसी इंटरफेस को एक बार समझ लेना और बाद में बिना सहायता के फिर से चला पाना दो अलग उपलब्धियां हैं। यदि उपयोगकर्ता को कम प्रयुक्त सुविधा खोजने, पासवर्ड नियम याद करने या कई चरणों का क्रम पुनर्निर्मित करने के लिए लगातार मानसिक प्रयास करना पड़े तो उपयोग धीमा और निराशाजनक हो सकता है। इस बॉटलनेक का परिणाम यह है कि उत्पादों को स्मृति पर निर्भरता कम करनी चाहिए। पहचानना सामान्यतः याद करके निकालने की अपेक्षा आसान होता है, इसलिए दृश्य संकेतों की निरंतरता, परिचित ढांचे, हाल की गतिविधि का उपयोग, स्पष्ट स्थिति सूचना और आवश्यक समय पर उपलब्ध सहायता महत्वपूर्ण बनते हैं। यह सिद्धांत विशेष रूप से उन प्रणालियों में उपयोगी है जिन्हें लोग रोज नहीं बल्कि अंतराल के बाद इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में डिजाइनर का लक्ष्य विशेषज्ञ उपयोगकर्ता की गति मात्र नहीं होना चाहिए बल्कि लौटने वाले उपयोगकर्ता की पुनर्प्रवेश क्षमता भी होना चाहिए। पुस्तक का दृष्टिकोण यह भी स्पष्ट करता है कि स्मृति की सीमा को केवल प्रशिक्षण या दस्तावेज से हल नहीं किया जा सकता। यदि उत्पाद स्वयं संकेतों और संरचना के माध्यम से याद रखने का भार बांटता है तो सीखने की लागत और गलती दोनों घट सकती है। चौथा, प्रवृत्ति और प्रेरणा क्षमता होने पर भी अपनाने का कारण आवश्यक है। पुस्तक में प्रवृत्ति और प्रेरणा अलग लेकिन संबंधित बॉटलनेक हैं। प्रवृत्ति से आशय उन अपेक्षाकृत स्थिर झुकावों, आदतों, पसंदों और पहचान संबंधी रुझानों से है जिनके साथ उपयोगकर्ता किसी नए डिजिटल प्रस्ताव का सामना करता है। प्रेरणा उस तात्कालिक कारण से जुड़ी है जिसके कारण वह व्यक्ति अभी कोई कदम उठाना चाहेगा। एक उत्पाद तकनीकी रूप से सरल हो सकता है फिर भी उपयोगकर्ता के लिए अप्रासंगिक लग सकता है। उसी तरह उपयोगकर्ता को लाभ का अंदाजा होने पर भी वह शुरू करने, जानकारी देने या पुरानी आदत छोड़ने का पर्याप्त कारण महसूस नहीं कर सकता। इवांस का ढांचा इसलिए एक समान उपयोगकर्ता की धारणा से सावधान करता है। डिजाइन और संचार में यह समझना आवश्यक है कि किस समूह के लिए कौन सा लाभ विश्वसनीय, तात्कालिक और स्वीकार्य है। केवल अधिक फीचर जोड़ना प्रेरणा नहीं बनाता और केवल आकर्षक दावा प्रवृत्ति से पैदा होने वाले संदेह को नहीं मिटाता। व्यावहारिक निर्णयों में इसका अर्थ है लाभ को उपयोगकर्ता के लक्ष्य से जोड़ना, आरंभिक बाधा घटाना तथा ऐसी भाषा से बचना जो उपयोगकर्ता की आत्म छवि या स्थापित तरीके से टकराती हो। यह विश्लेषण उत्पाद अनुकूलन को चालाकी से प्रभावित करने की तकनीक नहीं बनाता। इसके बजाय यह बताता है कि सार्थक मूल्य को उस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें उपयोगकर्ता उसे अपने जीवन और काम के संदर्भ में समझ सके। अंत में, सामाजिक प्रभाव का बॉटलिंग उत्पाद का मूल्य दूसरों की उपस्थिति से बदलता है। सामाजिक प्रभाव पुस्तक के ढांचे में अंतिम महत्वपूर्ण अवरोध है, क्योंकि अनेक डिजिटल नवाचार अकेले उपयोग करने पर नहीं बल्कि दूसरों के व्यवहार, राय और भागीदारी के साथ अपना मूल्य प्राप्त करते हैं। लोग किसी सेवा को अपनाने से पहले यह देख सकते हैं कि परिचित लोग उसे विश्वसनीय मानते हैं या नहीं, क्या उनके सहयोगी उसी माध्यम पर उपलब्ध हैं और क्या उसका उपयोग सामाजिक रूप से उचित लगता है। विशेषकर संचार, साझा करने और नेटवर्क आधारित उत्पादों में यह प्रभाव उत्पाद की उपयोगिता को सीधे बदल देता है। यदि उपयोगकर्ता के आवश्यक संपर्क वहां नहीं है तो उत्कृष्ट इंटरफेस भी सीमित लाभ देगा। इवांस का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इस समस्या को केवल प्रचार या उपयोगकर्ता संख्या तक सीमित नहीं करता। सामाजिक संकेत भरोसे, जोखिम की अनुभूति, मान्यता और व्यवहार के अनुमान को प्रभावित करते हैं। इसलिए डिजाइनरों को आमंत्रण, साझाकरण, सहयोग और समुदाय संबंधी अनुभवों को सावधानी से सोचना चाहिए। अत्यधिक दबाव डालने वाले सामाजिक संकेत अविश्वास पैदा कर सकते हैं, जबकि स्पष्ट अनुमति, उपयोगी साझा संदर्भ और वास्तविक पारस्परिक लाभ अपनाव को सहज बना सकते हैं। यह बॉटलनेक यह भी याद दिलाता है कि उपयोगकर्ता का निर्णय निजी नहीं होता। डिजिटल उत्पाद अक्सर सामाजिक परिवेश में चुने, समझे और मूल्यांकित किए जाते हैं। अतः उत्पाद रणनीति में व्यक्ति और उसके नेटवर्क दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। निष्कर्ष में, बॉटलनेक्स उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो डिजिटल उत्पादों के व्यवहारिक पक्ष को समझना चाहते हैं, विशेषकर यूएक्स डिजाइनर, उत्पाद प्रबंधक, डेवलपर, उद्यमी, शोधकर्ता और विपणन पेशेवर। इसे पढ़ने का व्यावहारिक लाभ किसी तैयार इंटरफेस नुस्खे की सूची पाना नहीं बल्कि समस्याओं को अधिक सटीक ढंग से पहचानना है। जब उपयोगकर्ता किसी सुविधा को नहीं अपनाते तो टीम यह पूछ सकती है कि समस्या ध्यान की है, समझ की है, याद रखने की है, प्रेरणा की है, प्रवृत्ति की है या सामाजिक परिस्थिति की। ऐसा निदान सत ही समाधान, जैसे बस अधिक संदेश, अधिक फीचर या नया दृश्य रूप जोड़ देना से बचाता है। पुस्तक की बौद्धिक उपयोगिता भी महत्वपूर्ण है। यह यूएक्स को केवल उपयोगिता परीक्षण या दृश्य डिजाइन तक सीमित नहीं रखती बल्कि उसे मानव संज्ञान, व्यवहार और सामाजिक संदर्भ से जोड़ती है। समान श्रेणी की कई पुस्तकों में या तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बहुत अमूर्त रहते हैं या उत्पाद सलाह सिद्धांत से अलग दिखाई देती है। इवांस की विशिष्टता इन दोनों के बीच पुल बनाने में है। वे मनोवैज्ञानिक सीमाओं को डिजिटल नवाचार के जीवन चक्र में वास्तविक निर्णय बिंदुओं की तरह प्रस्तुत करते हैं। फिर भी पाठक को इस ढांचे को सार्वभौमिक सूत्र नहीं मानना चाहिए। यह उपयोगकर्ता अनुसंधान का विकल्प नहीं बल्कि अनुसंधान से पहले और बाद में बेहतर प्रश्न पूछने का साधन है। इस संतुलन के कारण पुस्तक रणनीतिक सोच और रोजमर्रा के डिजाइन निर्णय दोनों के लिए उपयोगी संदर्भ बनती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डेविड सी एवंस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।